करके मानव शरीर दिया है, इस जीव के ऊपर बहुत विशेष कृपा की है। रामायण में है, कब करे करुणा नरदेही, देत इस बिन हेतु सनेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मनुष्य को मनुष्य शरीर देते, जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। तो भगवान स्वयं कैसे हैं, बिना हेतु कृपा करने वाले, स्वभाव उनका है बिना हेतु स्नेह करे, बिना किसी कारण के अपनी तरफ से कृपा करते, कोई अपनी तरफ से। वो जीव देखता है कि नहीं देखता है, जानता है कि नहीं जानता है, मानता है कि नहीं मानता है, कोई परवाह नहीं, स्वाभाविक कृपा करने वाले भगवान, स्वतः स्वाभाविक कृपा करने वाले विशेष कृपा करके मानुष ही देते हैं। तो उसको सदा के लिए मुक्त कर देना, सदा के लिए दुखों से छूट करके महान आनंद की प्राप्ति कर रहे, इसके लिए मानव ही दिया है। क्योंकि जीव भूत सनातन मन संस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती, मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, और अनाधिकार से सदा से मेरा अंश है। ये जीव रूप बना है, जीव भूत मनस्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान, प्रकृति में स्थित रहने वाला मन और इंद्रिया, इनको अपनी मानता कर सकती, खेसता है, इनको अपनी मानता है मेरा अंश। इन दोनों में फर्क देखो आप, कि मम एव अंश बिल्कुल मेरा अंश है, मम एव अंश है ये अश्वास का, और मन स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थाने, मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रिया है प्रकृति में स्थित, तो प्रकृति का अंश होने से मन संस्थान इंद्रिया तो प्रकृति में स्थित है, और ये मेरा अंश होकर के मेरे में स्थित न होकर और मन संस्थान इंद्रिया नहीं कर सकती, जो प्रकृति में स्थित रहते हैं उनको अपनी मानता है। ये गलती इसने की है खुद ने, इंद्रिया मन ये तो सब प्रकृति के कार्य, प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति स्थान का ये मेरा अंश है, मेरे में स्थित नहीं रहता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है, ये इसकी भूल खास। ऐसे प्रकृति में स्थित रहने वाले जीव के लिए भगवान ने देखा कि इसके भीतर दो इच्छा है, एक संसारिक सुख लेने की और एक अपने कल्याण की, ये दो इच्छा है। दो इच्छा क्यों है कि ये स्वयं तो प्रकृति का अंश और पकड़ा है परमात्मा का अंश, स्वयं तो परमात्मा का अंश और पकड़ा है प्रकृति का अंश, हो तो प्रकृति के अंश को पकड़ा है इस दृष्टि से तो इसके है संसार के सुख देने की इच्छा, और मेरा ही अंश होने से इसके है सदा कल्याण की इच्छा। दो इच्छा इनके विचार है। तो संसार का सुख लेना चाहे तो उसके लिए भगवान ने कर्म सामग्री दी है, काम करने की, कर्म करने की योग्यता दी है, अधिकार दिया है, सामग्री दी है। उसे तुम काम करो और 14 लोकों में घूमो, अच्छे अच्छे काम करके, यज्ञ आदि करके और स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं तो वे लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, और वहां जाकर के यहाँ किए हुए कर्मों का फल भोग कर जब जिन भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म किए थे वे भोग वहाँ भोग ले और समाप्त हो जाए तब क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, फिर मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। तो गतागतं काम काम आरभन्ते, बार बार जन्मना मरना जन्मना मरना चक्र में चले हुए है। ऊंचा से ऊंचा लोक ब्रह्म लोक है, उसकी एक विलक्षण महिमा है कि ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए जाते हैं वे तो पीछे लौट कर आते हैं, जो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पुरुष अंत समय में विचलित हो जाए। उसमें भी एक बात और याद आ गई, जो भगवान की भक्ति करते हैं और जो विवेक पूर्वक परमात्मा तत्व को चाहते हैं, इनको छोड़कर जो मन बुद्धि से भगवान का चिंतन करते हैं ऐसे पुरुष योग भ्रष्ट होते हैं। जो भगवान का ही भरोसा लेकर केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही चाहते हैं वे, और एक विवेक पुरुष जड़ता का त्याग करते हुए चिन्मय तत्व को प्राप्त करते हैं वे योग भ्रष्ट नहीं होते। मैंने इन वर्षों में काफी बार कहा है कि कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण निरपेक्ष, ये जो कर्ण है 5 ज्ञानेन्द्रियां है, 5 कर्मेन्द्रियां है, और 4 अंतर्ग्रहण मन बुद्धि चित्र अहंकार है, ये है कर्ण। वो वही कर्ण है और मन बुद्धि मुझे इंद्रिया ये अंतकरण है जो श्रोत चक्षु आदि, तो ये उनसे अंत और अंतर है ये, इस बात से इनको ज्ञानेन्द्रिय कहा है। गीता ने तो इनको भी कर्मेन्द्रिय कहा है, ज्ञानेन्द्रिय शब्द गीता में नहीं आता है, परंतु ये ज्ञानेन्द्रिय है, इसका वर्ण अलग आया है, श्रोतं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च, ऐसा अलग वर्ण 5 ज्ञानेन्द्रियों में आया है, पर गार ज्ञान इंद्रिय नहीं करे, कर्म इंद्रिय है, जो किया जाए वो सबका कर्म ही कर्म है, कर्म कर्म है। अब कर्मों से रहित होकर जो विवेक करते हैं कि कर्म और ये पदार्थ ये तो है एक चीज, और इनसे अलग चेतन तत्व अलग है, ऐसे विचार करके परमात्मा तत्व को चाहते हैं वे विवेक प्रधान है, उनमें कर्ण निरपेक्ष साधन है, उनका कर्ण आदि ये सब एक प्रकृति का अंश है, इस वास्ते इनका त्याग करके इनसे अनादर जो स्वरूप है उसकी तरफ ये चलते हैं, उनका साधन है कर्म निरपेक्ष, और चिंतन करके भगवान का करते हैं ये ध्यान प्रधान, और जो ज्ञान में भी मन बुद्धि लगा करते हैं वो है ज्ञान प्रधान, परंतु कर्ण को साथ रख लेते हैं और भगवान भगवान का ही भरोसा रखकर चलते हैं, वे भी अंतकरण इतनी परवाह नहीं करते, उनकी दो निष्ठा नहीं है, तीसरी निष्ठा है भगवान की ही भरोसा है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास भगवान का माम एकम शरण मुझे केवल मेरी शरण हो जा, ये नाथ मैं केवल आपका हूँ। उसमें विवेक की प्रधानता नहीं है, उसमें श्रद्धा प्रेम की भगवान के आकर्षण की ही प्रधानता है। तो ऐसे भक्ति में चलने वाले योग भ्रष्ट नहीं होते हैं, और विवेक को प्रधानता देकर चलने वाले योग भ्रष्ट नहीं होते हैं। जो मन लगा करके और मन के बुद्धि के द्वारा चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और मन बुद्धि के द्वारा ही निर्गुण तत्व का चिंतन करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन करते हुए इनसे ऊपर को चलते हैं, ये रहते हैं कर्ण सहित रहते हैं, ये कर्ण सापेक्ष रहते हैं। तो ऐसे होते हैं वो योग भ्रष्ट हो सकते हैं, वे योग भ्रष्ट हो जाए ऐसा नहीं है, वो योग भ्रष्ट होने की संभावना है, क्योंकि अंत समय में भगवान में मन नहीं रखा और भगवान से चरित मना हो गए, मन डिग गया, तो फिर वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। जो केवल भगवान का ही भरोसा भगवान में ही लगे रहते हैं, उनके भगवान के भरोसे रहने वाले योग भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि उनका जो प्रकार है चलने का वो केवल भगवान के भरोसे का है, अपने मन बुद्धि इंद्रियों का भरोसा नहीं, भगवान के भरोसे है। तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं सब तरह से, उनके पास नहीं वे नाम उत्तर विनाश जैसे उनका विनाश नहीं होता, वो योग भ्रष्टों का भी नहीं होता, उनका भी नहीं होता। तो उनको भगवान स्वयं अपना स्वरूप देते हैं, भगवान कृपा रखते हैं, भगवान का भरोसा रखने वाले ऐसे पुरुष होते हैं। उनके लिए कहा है कि पाषाण और काष्ठ के सदृश भी हो जाए, अंत में बेहोश हो जाए, जैसे पत्थर है और जैसे सूखा काठ है, ऐसी दशा हो जाए तो भी मैं उनको अभिष्ट दान देता हूँ, मानो उनका मैं कल्याण करता हूँ। जब तक उनको चेत रहा तब तक मेरे भरोसे मेरा नाम मेरे में लगे रहे, और बेहोश हो गए तो उसको उनको जब होश रहता है तो मेरे को याद करते हैं, तो मेरे को होश रहे तक मैं उनको याद करूँगा। क्योंकि ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथे वजाम्यम, ऐसे बजता तो वे योग भ्रष्ट नहीं होते। और विवेक प्रधानता को लेकर कर्म निरपेक्ष साधन करते हैं, कर्म निरपेक्ष कर्म का आधार नहीं है, कर्म का आश्रय नहीं है, कर्म रहित नहीं है, कर्म सहित है, पर कर्म का आश्रय नहीं, आश्रय भगवान उस तत्व का है। तो उसमें क्या कि जड़ता के त्याग की प्रणाली है उनकी, उनकी है जड़ के त्याग की प्रणाली, और भक्तों की है भगवान में लगने की प्रणाली, और बीच में है ये एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है। अब संसार का त्याग करने की प्रणाली भी ज्ञान योग में चले जाते हैं, और परमात्मा तत्व में लग जाते हैं, वे भक्ति योग में चले जाते हैं। तो भगवान को याद करते हुए चले जाते हैं तो वे कल्याण कर लेते हैं। अब रहे कर्मी, संसार का काम करते हैं संसार का, तो कर्म करने वाले अगर वे सुख चाहते हैं तो कर्म सामग्री भी है, इन कर्मों के द्वारा का स्वर्ग स्वर्ग आदि का सुख भोगो उनके लिए काम करे कहा, परंतु साफ कह दिया कि ब्रह्मलोक तक भी आप जाओगे, ब्रह्मलोक का सुख भी चाह करके जाओगे तो वहाँ से भी आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन है, वहाँ से फिर आना पड़ेगा, क्यों कर्मों का संग्रह कर्मों का फल सुख भोग करेंगे तो वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर आएंगे, इधर जन्म मरण में जाएंगे। तो सांसारिक भोग भोगने के लिए भगवान ने कर्म सामग्री दी है, और परमात्म तत्व प्राप्त करने के लिए विवेक दिया है। उस विवेक को लेकर के कर्मों के फल का त्याग करके चाहे भगवान में लग जाए, चाहे विवेक प्रधान ज्ञान में लग जाए, विवेक की प्रधानता रहे, वो योग भ्रष्ट नहीं होते, वो भगवान में लग जाते हैं, बड़ी तेजी से लग जाते हैं भी। तो वो तत्व में लग जाते हैं, उस तत्व की प्राप्ति में कुछ कमी रह जाती है तो वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। योग भ्रष्ट की तरह ही वो एक चीज है, विवेक की अंत समय में कमी रह जाए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर फिर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, परंतु कर्ण का सहारा भी झेल लेते हैं तो वे खिले पुणे बस पीछे लौट करके आते हैं। तो कर्म सामग्री भोग के लिए दी है और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए विवेक दिया है। तो विवेक और कर्म सामग्री दोनों दी है भगवान ने। अब कर्म सामग्री का विवेक पूर्वक आप उपयोग करो तो कर्मों का जो करना है वो केवल शुभ ही शुभ होगा, अशुभ कर्म नहीं होगा तो ऊपर में जाएगा, परंतु अशुभ पिंड छोड़ेगा नहीं, इस बात से जन्म मरण में जाते हैं। और विवेक पूर्वक अशुभ का त्याग कर चलते हैं वो ज्ञान मार्ग में जाने वाले भी ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का ही भरोसा है, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास पपैया की तरह, एक भगवान निष्ठ हो जाते हैं, वो दो निष्ठा से एक तीसरे निष्ठा उन निष्ठा में पिछड़े जाते हैं तो उनको भगवान कल्याण कर देते हैं, वो यहाँ ही प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो फिर भगवान के धाम में जाकर के वहाँ से भगवान के साथ ही रहते हैं, सालों के आदि मुक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने कर्म सामग्री दी है और विवेक दिया है। अब पूछा वही आ जाता हूँ मैं कि जो कृपा करके भगवान मानव शरीर देते हैं तो कृपा करके साथ में विवेक भी दिया है, जिसने सबको ये ज्ञान है कि ये संसार नाशवान है। ये ज्ञान किसको नहीं है, ज्ञान का आदर करे न करे ये तो है खुद की मर्जी, परंतु ज्ञान भगवान ने दिया है कि ये संसार बिल्कुल परिवर्तनशील है, नित्य रहने वाला नहीं है, इसके पास शरीर है, इस शरीर को भी दे दिया कि देखो एक समान नहीं रहता, इनको मन बुद्धि दे दिया कि ये एक समान नहीं रहते, इनका निश्चय बुद्धि आदि भी एक समान नहीं रहते, ये परिवर्तनशील है, इनका संग छोड़कर परमात्मा तो को प्राप्त करो। तो कर्म सामग्री दी है भोग के लिए और विवेक दिया है मोक्ष के लिए। तो विवेक पूर्वक जड़ता का त्याग करके और परमात्मा में सत्य हृदय से लग जाए तो उनका कल्याण होगा, उनको संदेह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान का हूँ, ऐसे एक मेरा भगवान है, मेरे चिंतन और भजन से मैं कल्याण कर लूंगा, ये भीतर में अभिमान नहीं रहता है। ये अभिमान रहता है तब तक कर्ण सापेक्ष है वो, और इसका अभिमान न रह करके और करेगा क्या कि भगवान का ही चिंतन है, जप है, कीर्तन है, श्रवण है, मनन है, भगवान की लीलाओं का कथन है, स्मरण है, सब करता है, परंतु भीतर में रहता है कि कल्याण होगा केवल भगवान की कृपा से, इन उद्योगों से, इनसे मैं कर लूंगा कल्याण, ऐसा अभिमान जिसके नहीं रहता है उन पर कृपा करते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कृपा करके मानव शरीर देते हैं, कब हो गए करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही बिना हेतु सने करने वाले विशेष कृपा करके देते हैं। तो यहाँ पर आ जाने पर भी कर्मों का फल चाह कर परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, उनकी दो निष्ठा होती है, एक योग निष्ठा होती है एक सांख्य निष्ठा होती है। उसमें भी कर्म निरपेक्ष होकर चलते हैं, उनका उद्धार ठीक हो जाता है, उनके योग भ्रष्ट होने की भी संभावना नहीं है, ऐसी विलक्षणता से परमात्मा चलते हैं। तो संसार का ही सुख और संयोग जो सुख चाहते हैं, वे बार बार ब्रह्म लोक तक जाकर के ही लौट करके आते हैं, लोकों में घूमते रहते हैं। तो कर्म सामग्री भगवान ने सुख भोगने के लिए दी, पर सुख भोगने के साथ में दुख भोगना पड़ेगा, ये सुख और दुख से ऊंचे उठ नहीं सकते। और विवेक की प्रधानता लेकर अथवा भगवान के भरोसे की प्रधानता लेकर चलते हैं तो वे जब से ऊंचे ही उठते हैं, वे भोगों को सहारा नहीं लेते। तो इस विवेक का आदर करना हरेक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान ने विवेक दिया है, विवेक क्या, ये समझ कि ये नाशवान है, शरीर नाशवान है, संपत्ति नाशवान है, ये संग्रह नाशवान है, मान बढ़ाई आदर सत्कीर्ति आदि जो है, भोग सामग्री है, धन आदि है, कुटुंब है, जितना है, ब्रह्म लोक तक के जितने भोग है, ये सब के सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, ये विवेक दिया है भगवान। तो विवेक को काम में लेकर चाहे भगवान में लगे ऐसा ज्ञान में लगे, उनका उद्धार होगा जल्दी से। और ये तो महाराज काम भोगते ही रहेंगे तो सुख भोगते रहो, इच्छा करते रहो, गतागतम काम काम आरभन्ते, क्योंकि गतागतम है आना जाना इसमें फंसे रहेंगे। तो भगवान की तरफ चलना है उसके लिए विवेक को प्रधानता लेकर आप चाहे भक्ति में लगो चाहे ज्ञान में लगो और चाहे निष्काम भाव से कर्म करो, तो निष्काम भाव विवेक की प्रधानता से होगी, विवेक की प्रधानता न होने से सकाम भाव रहता है और सकाम भाव ही धर्म मन देता है। ये बात है। अब इसमें जो शंका हो वो आप लोग
सुख प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करता हुआ ब्रह्म लोक तक जाता है,
हाँ।
वो योगी कहलाता है क्या?
वो
योगी कहलाता है
क्या? ना, योगी नहीं होता। जो ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए जाता है वो योगी नहीं होता है, उसके लिए भी योग पद आया है गीता में, एक बार दो बार आया है। वो योग इस वर्ष आया है कि जो कल्याण चाहने वाले भी उस ब्रह्मलोक में जाते हैं तो वे योगियों का मार्ग है, उस मार्ग में सकाम कर्मी को भी योगी भगवान ने कहा है। तत्सांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्ति वर्ष से, एक बार याद है और दो बार के एक बार उसमें योग शब्द दिया है भगवान ने, उनको योगी नहीं कहते मैंने योगी कहते हैं,
क्योंकि वो मार्ग में जाता है, योगी के मार्ग में जाता है,
योग मार्ग में जाता है इसलिए योगी नाम दिया है उसका। वो उस खुद का मार्ग नहीं है। वो जैसे योग भ्रष्ट होकर स्वर्ग आदि में जाते हैं तो वो उनका लोग नहीं है, प्राप्त पुण्य कृता हम लोग, पुण्य कृता का मार्ग है, उस मार्ग में चले गए वे भी पुण्य कार्य मार्ग में चले गए तो वे भी भोग मार्ग में गए और वो भोगी भी योग मार्ग में गया, ये दोनों का वर्णन था।